महाबंद पुस्तक छठवी लेक्चर नंबर 3। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वच्छायाण, नमो लोए सौवसाहुर। भूतबलि प्रणीतं तं बंधतत्वप्रकाशकं महाधवल विख्यातं महाबंधं नमाम्यहम्। आचार्य श्री भूतबलि भट्टारक प्रणीत यह महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जो षटखंडागम का 6 नंबर का खंड है। इसमें अभी हमारा चतुर्थ प्रदेश बंध अधिकार चल रहा है और इस छठवीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 9 पर हम आ गए हैं। देखो, यहाँ योग स्थानों की चर्चा चल रही है, तो उसमें हमने स्थान प्ररूपणा, योग स्थान प्ररूपणा और प्रदेश बंध प्ररूपणा है, तो उसमें योग स्थान में हमने अविभाग प्रतिच्छेद क्या होता है वो देखा, वर्गणा किसको कहते हैं वो देखा, स्पर्धक स्पर्धकों में जो अंतर, और अभी स्थान प्ररूपणा के अंतर्गत हमने एक स्थान क्या होता है, तो हमने जघन्य स्थान की बात की थी। तो जघन्य स्थान में क्या होता है, यानी प्रत्येक क्या स्थान में क्या होता है, तो असंख्यात स्पर्धक होते हैं, और एक एक स्पर्धक में असंख्यात वर्गणाएं होती है, और एक एक वर्गणा में असंख्यात प्रदेश यानी वर्ग होते हैं। वो असंख्यात का प्रमाण क्या है, तो वर्ग एक जघन्य वर्गणा में 2 वर्गों का प्रमाण है, वो असंख्यात जगत प्रतर है। एक एक वर्ग में अविभाग प्रतिच्छेद कितने, तो असंख्यात लोक है। एक स्पर्धक में वर्गणाएं कितनी है, तो जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। ऐसे ही वर्गणा वर्गणा में प्रतिवर्गणा प्रदेश कम होते होते जहां आधे होते उसको कहेंगे गुणहानि। एक गुणहानि में स्पर्धक भी या वर्गणा भी कितने होते, तो वो भी जगत श्रेणी के असंख्यात भाग। और ऐसे टोटल नाना गुणहानियां कितनी होती है, कल हमने देखी थी ना, हाँ, नाना गुणहानि कितनी देखी थी, देखो पल्ले के असंख्यात विभाग, और एक गुणहानि का प्रमाण श्रेणी का असंख्यात विभाग, यहां तक हमने बात देखी थी। अब यहाँ 9वें पुस्तक पर देखो, पहले हमने अनंत रूप निधा में क्या देखा था, प्रतिवर्गणा कुछ कम कुछ कम कुछ कम होते हैं, और अविभाग प्रतिच्छेद एक एक स्पर्धक में एक एक वर्गणा में एक एक से बढ़ता है, 2 स्पर्धक के अंतर बीच में अंतर होता है। परंपरोपनिधा के प्रकरण में हमने देखा था कि योग स्थानों की बात यहां चल रही। देखो, ये तो हमने प्रतिवर्गणा में क्या होता है, एक योग स्थान में क्या होता है वो बात बताई। अभी जो असंख्यात ऐसे योग स्थान कितने हैं, टोटल टोटल योग स्थान, ना योग स्थान भी जिसने का संख्या देगा निकालो, पेज नंबर 7 पर ये बात लिखी थी। एक स्थान में स्पर्धक श्रेणी के असंख्यात विभाग, बराबर, ऐसा एक योग स्थान, थोड़ा अधिक दूसरा, थोड़ा अधिक तीसरा, एक योग स्थान से दूसरे योग स्थान में स्पर्धक कितने अधिक होते हैं, वो जघन्य स्पर्धक का सूचंगुल के असंख्यात विभाग गुणा का। तो उसमें अंतर की बात हुई ना, तो अंतर में बताएंगे कि जघन्य, पेज नंबर 7 पर नीचे का पैराग्राफ, नीचे से दूसरा, जघन्य योग स्थान में स्पर्धक सबसे थोड़े हैं। कितने हैं? श्रेणी के असंख्यात विभाग। दूसरे योग स्थान में विशेष अधिक है, वो विशेष का प्रमाण कितना है? अंगुल का असंख्यात भाग। प्रमाण स्पर्धक अधिक होते हैं। और दूसरी भाषा में बताना है अनुभाग की अपेक्षा, तो जघन्य स्पर्धक को से अंगुल के असंख्यात विभाग गुणा करना, इतना अनुभाग ज्यादा होता है। स्पर्धकों की बात करेंगे तो इतने स्पर्धक ज्यादा होते हैं। और योगस्थान टोटल कितने होते हैं वो ऊपर 13वें नंबर की पैराग्राफ में लिखा है, ऊपर से नया पहला पैराग्राफ में लिखा है। स्थान प्ररूपणा की अपेक्षा असंख्यात स्पर्धक जो कि शेवट श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण होते हैं, वो एक स्थान में स्पर्धक मिलकर जघन्य योग स्थान होता है। इस प्रकार टोटल योग स्थान कितने होते हैं? एक, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे असंख्यात, और वो भी कितने हैं? श्रेणी के असंख्यात विभाग। यहाँ तक बात है। अब अंतर उपनिधा की बात, दो योग स्थानों में कितना अंतर होता है? पहले हमने स्पर्धकों में कितना अंतर होता है वो देखा था। यहाँ एक स्थान योग स्थान से दूसरे योग स्थान में कितने स्पर्धक ज्यादा होते हैं, तो अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण स्पर्धक ज्यादा होते हैं, वो भी असंख्यात स्पर्धक उसमें एक्स्ट्रा हो गए, फिर तीसरे में उतने एक्स्ट्रा हो गए। इस तरह से टोटल जो है, देखो 6 नंबर के पेज पर हमने वो बाकी दो देखी थी स्पर्धक प्रमुखता, ये सॉरी 7 के बाद हमको देखना है, 8 नंबर के पेज पर आना। योग स्थानों में अनंतर उपनिधान का अर्थ क्या है? एक योग स्थान से दूसरे योग स्थान में कितने स्पर्धक अधिक है? हाँ, अभी परंपरा उपनिधा में क्या लिखता है, तो स्पर्धक थोड़े अधिक हो गए, थोड़े अधिक हो गए, थोड़े अधिक हो गए। मूल में कितने थे? श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण। जघन्य योग स्थान में स्पर्धक कितने थे? जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग। थोड़े अधिक करते करते तो कहते हैं जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण स्थान जाने पर स्पर्धकों की दूनी वृद्धि होती, दो गुणे हो गए ना, यानी एक गुणहानि में जितने स्पर्धक होते उसके दुगुना हो जाएगी, उसको एक गुणहानि कहेंगे या द्विगुण वृद्धि स्थानांतर कहेंगे। उसका प्रमाण कितना है? श्रेणी का असंख्यात विभाग। और ऐसे नाना गुणहानियां कितनी होती है? तो पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण। यहां तक तो हमने पढ़ा था, अब 9 पृष्ठ पर आना है। समय प्ररूपणा से शुरुआत करते हैं। अभी समय प्ररूपणा किसमें बता रहे? योग स्थान में, यानी कौन सा योग स्थान कितने समय तक, या कितने योग स्थान 4 समय तक होते हैं वो कितने हैं, 5 समय वाले कितने हैं, लगातार अधिक से अधिक कितने समय तक वो पाए जाएंगे उसकी बात है। देखो समय प्ररूपणा की अपेक्षा 4 समय वाले योग स्थान जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण है, 5 समय वाले योग स्थान जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण है। सबका संख्या कितनी कहेंगे? जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग, उसमें भी हीनाधिकता होगी। तो कहते हैं इसी प्रकार 6, 7 और 8 समय वाले तथा पुनः 7 समय वाले, 6 समय वाले, 5 समय वाले, 4 समय वाले और इनसे ऊपर के 3 समय वाले तथा 2 समय वाले योग स्थान अलग अलग, यानी प्रत्येक अपने अपने जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण है। हाँ, क्योंकि टोटल स्थान ही उतने हैं, वो तो लगातार 4 समय तक चलने वाले वगैरह इसकी बात चले। अब इसी का विशेषार्थ, ये पहले जो जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण योग स्थान बतलाए है उनमें से सबसे जघन्य योग स्थान से लेकर नीचे के है ना, जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण योग स्थान 4 समय की स्थिति वाले हैं, यानी 4 समय तक होना ही चाहिए, जरूरी नहीं अधिक से अधिक 4 समय तक वो लगातार हो सकते हैं। उनसे आगे जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण योग स्थान 5 समय की स्थिति वाले हैं, क्योंकि हमने जघन्य योग स्थान से बात शुरू की थी। उनसे आगे जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण योग स्थान छह समय की स्थिति वाले, उनसे आगे आगे यानी अधिक योग वाले स्थान, क्योंकि हम जघन्य से उत्कृष्ट तक हमने एक लाइन में लिखे थे और इसके आगे के ने ऊपर ऊपर के उसकी बात है, उनसे आगे उतने ही योग स्थान, सात समय की स्थिति वाले उतने ही जगत चन्नी के असंख्यात विभाग, उनसे आगे उतने ही योग स्थान आठ समय की स्थिति वाले है, यानी वो जिसको हम यव मध्य कहते हैं समय की अपेक्षा, ये मैक्सिमम समय तक ये बीच वाले कुछ स्थान पाए जाते हैं। पुनः उनसे आगे उतने ही योग स्थान सात समय की स्थिति वाले हैं, उनसे आगे उतने ही योग स्थान छह समय की स्थिति वाले हैं, उनसे आगे उतने ही योग स्थान पांच समय की स्थिति वाले हैं, उनसे आगे उतने ही योग स्थान चार समय की स्थिति वाले हैं, उनसे आगे उतने ही योग स्थान तीन समय की स्थिति वाले हैं, और उनसे आगे उतने ही योग स्थान दो समय की स्थिति वाले हैं। यानी जो उत्कृष्ट के तरफ से जो योग स्थान है कितने ही, वो तो लगातार दो ही समय तक रह सकते हैं, ये उसका अर्थ है, एक या दो समय तक रहेंगे। समान है नहीं जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग और सबके मिलकर भी जगत श्रेणी, तो क्या हम समान कह सकेंगे? नहीं 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 नहीं, उतने ही है परंतु समान नहीं है।
अच्छा, चार समय वाले कम
होते नहीं, वो अभी पढ़ेंगे, आप बहुत जल्दी करते प्रश्न पूछने के लिए। दो समय तक आए ना, अब जघन्य अवस्थिति काल सबका एक समय, उसका अर्थ क्या है? हमने जो चार समय वाले देखे या कोई तीन या दो या साठ समय वाले, तो वो जगह एक समय के लिए भी रह सकते हैं। ये मैक्सिमम कितने समय तक रहते हैं उसको चार समय वाले पांच समय वाले कह दिया। जहां चार आदि समय की अवस्थिति वाले सब योग स्थान यद्यपि जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण कहे हैं, फिर भी उनमें आठ समय वाले योग स्थान सबसे थोड़े हैं। ये आपके प्रश्न का उत्तर, इनसे दोनों ओर के सात समय वाले योग स्थान परस्पर में समान हुए भी असंख्यात गुणे हैं, खाली थोड़े अधिक नहीं, असंख्यात गुणा मोर, और थोड़ा मोर नहीं, असंख्यात गुणा। हाँ, इनसे दोनों पार्श्व के छह समय वाले योग स्थान परस्पर में समान होते हुए भी असंख्यात गुणे हैं, इनसे दोनों पार्श्व के पांच समय वाले योग स्थान परस्पर में समान होते हुए भी असंख्यात गुणे हैं, इनसे दोनों पार्श्व के चार समय वाले योग स्थान परस्पर में समान होते हुए भी असंख्यात गुणे हैं, इनसे तीन समय वाले योग स्थान असंख्यात गुणे हैं। देखो, इनसे दोनों में नहीं है, एक ही पॉइंट, चार समय तक दोनों पार्श्व में होते हैं, तीन समय वाला नीचे नहीं है, उसको दोनों पार्श्व नहीं कहेंगे, तो योग स्थान असंख्यात गुणे, इनसे दो समय वाले योग स्थान असंख्यात गुणे। ये तीन समय वाले और दो समय वाले योग स्थान यव मध्य के ऊपर ही होते हैं, नीचे नहीं होते, लिखा ना इस प्र... हाँ, वो हमने बोला है ना आपको, वैसे वो फिगर बताए, हमेशा यव मध्य की, यव मध्य नीचे की ओर ही बताते, ऊपर दो समय वाले और तीन समय वाले है ना, फिर चार समय वाले, आठ समय वाले सबसे छोटे, सात समय वाले उससे असंख्यात गुणे, छह समय वाले उससे असंख्यात गुणे, पांच समय वाले उससे असंख्यात गुणे, इस तरह से ले लेना। तो ये यव मध्य होता है, ये आठ समय वाले, सात समय वाले, छह समय वाले, ये पांच समय वाले, दोनों ओर करना, फिर चार समय वाले, इसे ऊपर भी चार, तीन और दो, परंतु सबसे कम है आठ समय वाले, ये दोनों ओर के सात समय वाले समान बट असंख्यात गुणे, ये समान बट असंख्यात गुणे, समान बट असंख्यात गुणे, समान बट असंख्यात गुणे, ये उससे भी असंख्यात गुणा, ये उससे भी असंख्यात गुणा। इस प्रकार समय प्ररूपणा करने के बाद अब वृद्धि प्ररूपणा करते हैं, ये योग स्थान की नौ नंबर की प्ररूपणा है। वृद्धि प्ररूपणा की अपेक्षा यानी इसमें कितने प्रकार की वृद्धि होती है, तो कहते चार प्रकार की होगी ना वृद्धि और हानि। तो असंख्यात भाग वृद्धि, क्योंकि योगों में तो असंख्यात का ही प्रमाण है, तो प्रदेशों में भी उतना होगा। मेरे प्रदेश है अनंत, परंतु उसमें वृद्धि तो असंख्यात गुणा की होगी। और ये भी हम समय प्रबद्ध की अपेक्षा कह रहे, बंधने वाले की अपेक्षा बात है। तो वृद्धि प्ररूपणा की अपेक्षा असंख्यात भाग वृद्धि और असंख्यात भाग हानि है। ये कितनी है? सबसे कम है, क्योंकि असंख्यातवा भाग वृद्धि हानि हो रही है। संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग हानि है, पहले है ये बता रहे। संख्यात गुण वृद्धि और संख्यात गुण हानि है, तथा असंख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण हानि है। इनमें से तीन वृद्धि और तीन हानियों का कितना काल है? तो जघन्य काल एक समय है, और उत्कृष्ट काल अवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। परंतु असंख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण हानि का कितना काल है, उसका अर्थ प्रति समय इतनी वृद्धि होते 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 लगातार कितने समय तक हो सकती है? तो कहते हैं कि असंख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण हानि का कितना काल है? जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। सबसे बड़ी वृद्धि है वो हमने अनुभाग में भी ऐसा ही देखा था, आपको याद होगा। तो वहाँ पांच वृद्धि हानि का काल स्तोक था अवली का संख्या था, और अनंत गुण वृद्धि का अंतर्मूर्त था। यहाँ पर मैक्सिमम असंख्यात गुण वृद्धि है, वृद्धि कहो या हानि कहो, ये एक समय से अंतर्मूर्त है, इसी का विशेषार्थ। यहाँ पर वृद्धि और हानि का विचार किया गया है। योग वर्ग असंख्यात होने से यहाँ चार वृद्धि और चार हानि ही संभव है। विवक्षित योग स्थान में एक जीव है, उसके जितनी वृद्धि या हानि होकर उसे जो योग स्थान प्राप्त होता है, वहां वह वृद्धि या हानि होती है। क्या कहते हैं? किसी जीव को कोई योग स्थान अभी है, अब दूसरे समय में उसमें योग की वृद्धि होगी या हानि होगी, और जो स्थान प्राप्त होता है तो वह क्या कहेंगे? वृद्धि हानि। इसी प्रकार सब योग स्थानों में वृद्धि और हानि का विचार कर लेना चाहिए। आत्मा के प्रदेश योग वर्ग असंख्यात होने से, यानी वर्गों की संख्या कितनी है? लोक प्रमाण असंख्यात है, परंतु उसका उन्होंने जो कारण बताया ना, क्योंकि योगों के जो अविभाग प्रतिच्छेद है ना, अनंत कहाँ है? असंख्यात लोक ही है ना, यानी उसके अविभाग प्रतिच्छेद भी असंख्यात होते हैं और या स्पर्धक भी असंख्यात होते हैं। योग वर्ग क्यों कहा वो मेरे ख्याल में नहीं आया। अविभाग प्रतिच्छेद भी असंख्यात होते हैं, पर एक योग स्थान में हमने टोटल योग स्थान देखेंगे ना हम, ऊपर क्या लिखा है? योग वर्ग ही लिखा है, ये तो विशेष अर्थ है। हाँ योग अविभाग प्रतिच्छेद असंख्यात होने से चाहिए। क्योंकि स्पर्धकों में वृद्धि होगी ना, या स्पर्धकों की भाषा में कहेंगे हम नंबर ऑफ स्पर्धक, ठीक है। क्या होगा ना उसका अर्थ है? आठ समय वाले उसका अर्थ क्या है? अभी समय प्ररूप में जो बता रहे वो अवस्थित की ही तो बात है, नहीं समझे? तो अवस्थान कौन से में होगा? उपपाद में होगा, एकांत वृद्धि में होगा, के परिणाम में होगा? तो आपका प्रश्न अवस्थित होता है कि नहीं होता है, ख्याल में आई ना बात? यही तो होता है। और वृद्धि होती है तो क्या होता है वो बताए। यानी कोई अंतर्मुहूर्त तक उतना का उतना नहीं रहेगा, मैक्सिमम 8 समय तक रहेगा। अभी अल्पभूतव, अल्पभूतव की अपेक्षा 8 समय वाले योग स्थान सबसे स्तोक है। फिर भी हमने देखे जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग है, इनसे दोनों ही पार्श्वों में 7 समय वाले योग स्थान दोनों ही तुल्य होकर असंख्यात गुणे हैं। ये वाक्य रिपीट हुआ है इसलिए हमने एक वाक्य और निकाल दिया इसमें से। अब डायरेक्ट नीचे के लाइन में चलना, क्योंकि 7 समय वाले हो गए थे। फिर तीसरे नंबर पर, इनसे दोनों ही पार्श्वों में 6 समय वाले योग स्थान परस्पर में समान होकर असंख्यात गुणे हैं। इनसे दोनों ही पार्श्वों में 5 समय वाले योग स्थान दोनों ही समान होकर असंख्यात गुणे हैं। 5 समय वाले की उसका अवस्थित मैक्सिमम 5 समय तक चलता है, ये उसका अर्थ होता है। हाँ, अभी जो हमने देखा, हाँ नहीं नहीं श्रेणी का असंख्यात, एक मिनट, केवल असंख्यात गुणे कहा है, परस्पर में समान होते हुए असंख्यात गुणे। ना 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 ना, गुणकार कितना है उसमें मिलता है क्या? देख लो, अभी है पुस्तक तो, पर कितना पेज था हमारा, वो कितने गुना है ना, एक मिनट, पल्ले के असंख्यात विभाग गुना है। देखो 243 पेज, निरंतर, ये जो योग स्थानों की चर्चा है ना, तो निरंतर योगों में की, आपने प्रश्न पूछा है, हाँ शुरुआत में था ना, गुणा है कितने, असंख्यात गुणा है क्या कहते, वो तो शुरुआत में कितने हैं वो बताया है, लास्ट में नीचे नीचे विशेषार्थ में गुणा कहा है, विशेषार्थ में असंख्यात गुणा कहा है। होना चाहिए अपन कितने असंख्यात गुणा करना, ये प्रश्न है। वो ये यवाकार रचना जो बताई ना 8 समय वाली, वो किसमें हो गए, परिणाम योगों में हो गए, और वो भी किसमें, त्रस संबंधी परिणाम योगों में हो गए। निकालो 243 पेज, अभी लिया है आपने तो, मैंने तो ना बोला था, आपने लाए क्या? नहीं, ये इधर इधर का ही, हाँ 243 पेज पर, टू फोर्टी टू से देखते हम। एक मिनट, मैं कर्मकांड का यहां लिख के रखती रेफरेंस, कर्मकांड भाग एक पृष्ठ है 242, गाथा भी 242 ही है। हाँ देखो, वहां देखते हैं ये कितने समय क्या होता है। उपपाद योग स्थान और एकांत अनुरुद्धि योग स्थान के प्रवर्तन का काल यानी रहने, जघन्य भी और उत्कृष्ट भी एक ही समय है। निकाला आपने, क्योंकि उपपाद तो एक समय होते ही होते हैं। 242 पर, 242 गाथा की टीका मैं पढ़ रही हूँ। उपपाद तो एक समय होता है, और एकांत वृद्धि भले वो अंतर्मुहूर्त चलेगी, पर एक कोई योग स्थान एक समय के लिए होगा, समझ में आई बात? प्रति समय वृद्धि हो रही है, एकांत अनुवृद्धि किसको कहते हैं, प्रति समय असंख्यात गुना वृद्धि हो रही, तो इसलिए उसका एक कोई योगस्थान एक ही समय के लिए होगा, क्योंकि उपपाद योगस्थान जन्म के प्रथम समय ही होता है और एकांत अनुवृद्धि योगस्थान प्रति समय वृद्धि रूप अन्य अन्य होता है। इतर इतर यानी कौन, जो परिणाम योगस्थान है उनके निरंतर प्रवर्तने का काल दो समय से लेकर आठ समय तक है, यानी उतना का उतने का रहने का काल निरंतर प्रवर्तने का, एक समय के लिए हो सकता है पर एक समय का उसको निरंतर प्रवर्तन नहीं कहेंगे हम, अधिक से अधिक कितने काल तक, दो समय से ऐसा उसको निरंतर प्रवर्तने का यानी अवस्थान का काल कितना होगा, दो समय से आठ समय, या रहने का काल कितना होगा, एक समय से आठ समय। यहां तक समझ में आई बात? देखो यहां पर दे अभी 243 बगाना, द्विन्द्रिय पर्याप्त जीव के जघन्य परिणाम योग स्थान से लेकर, ये नंबर 75 पर था, हमने जो 84 स्थान देखे थे ना उसमें 75 नंबर का, उससे लेकर संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव के उत्कृष्ट परिणाम योग स्थान तक, ये 84 नंबर का स्थान है। यानी ये कैसे है, निरंतर योग स्थान है, पहले अंतर बहुत बार आ चुका था उसको छोड़ दिया, तो इन निरंतर योग स्थानों में ये यवाकार रचना होगी, क्योंकि द्विन्द्रिय के परिणाम योग स्थान जघन्य से लेकर संगी पंचेंद्रिय का उत्कृष्ट योग स्थान परिणाम योग स्थान तक, अब यह यवाकार रचना है। अब देखो वहां जो योग स्थान निरंतर आठ समय प्रवर्तते हैं उन्हें मध्य में लिखना, जो योग स्थान निरंतर सात समय में प्रवर्तते हैं उनको आधे तो आठ समय वालों के ऊपर लिखना आधे नीचे लिखना, जो योग स्थान छह समय निरंतर प्रवर्तते हैं उनमें से आधे ऊपर आधे नीचे लिखना, जो पांच समय के वो आधे ऊपर आधे नीचे, ऐसे चार वाले भी और तीन वाले कहाँ लिखना है, ऊपर, दो समय वाले ऊपर। अब कहते दूसरा पैराग्राफ नीचे, यहाँ त्रस जीव संबंधी परिणाम योग स्थानों में मध्यवर्ती स्थान मध्य में लिखे हैं, उनसे पहले स्थान और पश्चात के स्थान उनके ऊपर और नीचे लिखे है। अब इनका प्रमाण बताते हैं, हर एक का प्रमाण कितना है, जगत श्रेणी का असंख्यात भाग। अब देखो द्विन्द्रिय पर्याप्त के जघन्य परिणाम योग से लेकर संगी पंचेन्द्रिय पर्याप्त के उत्कृष्ट परिणाम योग तक योग स्थानों का प्रमाण जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग को एक कम पल्ले के अर्धच्छेदों के असंख्यातवे भाग से गुणा करके सुचंगुल के असंख्यातवे भाग का भाग देने पर जो प्रमाण हो उसमें एक मिला इतना है। टोटल प्रमाण बताया, यानी इस जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग को एक कम पल्ले के अर्धच्छेदों के असंख्यात, पल्ले के अर्धच्छेद हमने 32 माना था तो एक कम 31 हो जाता है, उससे गुणा किया और सुचंगुल के असंख्यात विभाग का भाग दिया। गुणा किया और कुछ भाग दिया, फिर भी क्या कहेंगे, जगत श्रेणी का असंख्यात भाग ही टोटल करेंगे। अभी उसका पर्टिकुलर पल्ले के असंख्यात भाग से भाग दिया तो वहां एक भाग बिना बहु भाग तो दो समय वाले प्रवर्तन वाले हैं, उसकी संदृष्टि देखो तो आपको ख्याल में आ जाएगा। देखो श्रेणी के असंख्यात भाग को 31 से गुणा किया है, 31 क्या है, एक समय कम पल्ले के अर्धच्छेद का असंख्यात भाग, अर्धच्छेद का असंख्यात भाग उसके पल्ले का असंख्यात भाग का एक समय कम किया और नीचे उसको अवली के असंख्यात भाग से भाग दिया और सब में से एक अधिक किया। अब वो क्यों किया, उसकी संदृष्टि क्या है, तो यहां उसके एक बार पल्ले के असंख्यात भाग से भाग दिया है, अब तीन वाले दो बार पल्ले के असंख्यात भाग से भाग दिया, चार वाले तीन बार किया, देखो नीचे भागाकार बढ़ रहा है तो टोटल उसका उत्तर कम आएगा, छह में और एक बार बढ़ाए सात में, सबसे ज्यादा कहाँ है? आठ में। वो एक अधिक ऊपर क्यों किया? एक अधिक एक कम पल्ले के असंख्याते भाग से क्यों किया? क्योंकि तो बहुभाग का एक भाग, बहुभाग का एक भाग, इस तरह से हम उसको देखते हैं। तो सबसे कम संख्या किसमें? आठ में है। अब उसी संदृष्टि को ऊपर आप देखो, तो उसको ऊपर देखेंगे तो उसमें क्या है? पल्ले का असंख्यात भाग एक कम हुआ, बराबर, और उसमें गुणा किया एक माइनस पल्ले के असंख्यात भाग से। ये नहीं समझे आप? देखो हमारे पास सौ है, उसको हमने दस का भाग दिया, कितने आते हैं? दस आए, और नौ से गुणा किया, बहुभाग आता है ना, ख्याल में आई बात? क्या कर रहे हम? दस से भाग रहे और एक कम से गुणा कर रहे, यानी बहुभाग लिया। ऐसे हम पल्ले के असंख्या पे भाग से भाग दे रहे और एक कम पल्ले के असंख्या पे भाग से गुणा कर रहे, बहुभाग बहुभाग, और उसको भी दो से भाग दिया क्योंकि दोनों और डिवाइड करना है। ये दो संख्या जो है वो भागाकार में, क्योंकि जगत श्रेणी सिंगल लाइन में है, जगत श्रेणी का असंख्यात भाग उस लाइन में दो लिखा है, यानी दो है डिवीजन में गई है। आप संदृष्टि समझ सकते हैं ना? संदृष्टि समझ सकते हैं? आठ की संदृष्टि कैसे है? देखो संदृष्टि समझ लो, आठ वाला नहीं, नहीं देखो, ये जगत श्रेणी ये हमारी रेगुलर संख्या है जिसको हम अंश कहेंगे। तो जगत श्रेणी का असंख्यात भाग लिया, जगत ये आठ वाली बात लिख, जगत श्रेणी का असंख्यात भाग, उसको किसके गुणा किया हमने? 31 से, यानी वो पल्ले के अर्धचर के असंख्यात भाग में एक कम कर लिया, उसके हमने गुणा किया, और हमने सूचंगुल के असंख्यात भाग से भाग दिया, भाग दिया वो असंख्यात के लाइन में। ये हमारी अंश है और ये हमारे छेद है। यहां तक समझ में? आठ वाली बात। अब उसमें आगे पल्ले के असंख्यात भाग हमने छह बार लिखे, तो छह बार पल्ले का, ये पल्ले यहां लिखना और उसका असंख्यात भाग, पल्ले का असंख्यात भाग, पल्ले का असंख्यात भाग, इसे छह बार लिखा हमने, एक दो तीन और यहाँ और एक बढ़ा दो, छह बार लिखा ना, और ऐसा करके उसका एक भाग लिया है। ऊपर एक लिखा है ना जगत श्रेणी के लाइन में, ये 31 जगत श्रेणी के लाइन में आना चाहिए था, और यहाँ एक बार लिखा, यानी उसका असंख्यात भाग किया। अब दोनों और क्या करेंगे? पल्ले के असंख्यात भाग गुणा करना है, तो पल्ले के असंख्यात भाग गुणा करेंगे तो एक पल्ले का असंख्यात भाग इसमें से कट हो जाएगा, तो पल्ले के असंख्यात भाग से गुणा करके बहुभाग लेना है, तो बहुभाग लेने के लिए ऊपर एक कम पल्ले का असंख्यात भाग से गुणा किया हमने। समझ में आई बात? पल्ले के असंख्यात भाग से भाग दिया तो एक हमारा पल्ले का असंख्यात भाग चला गया और एक कम पल्ले के असंख्यात भाग से गुणा किया, जैसे हमने वहां 10 से भाग देकर 9 लिए थे, उसका अर्थ क्या हुआ? बहुभाग लिया। अब उसके 2 से भाग देना, ये 2 इस लाइन में आने चाहिए, तो दोनों ओर ले लिया। आगे क्या करेंगे? ऐसा ही रखेंगे और एक पल्ले का संख्या का भाग और कम करेंगे, ये 6 समय वाले हो गए, दोनों ओर जाएंगे, तो इससे 5 समय वाले, 5 समय वाले में 4 बार हुआ, 4 समय वाले 3 बार हुआ, 3 समय वाले 2 बार हुआ, और 2 समय वाले में 1 बार हुआ। बाकी तो बहुभाग वगैरह वो तो चर्चा वैसे ही होगी। 2 क्योंकि दोनों ओर है, इसलिए वहां वो 2 नहीं रखेंगे आगे। 3 और 2 के लिए 2 नहीं लिखा है, देखो 4 तक 2 लिखा है, क्योंकि दोनों ओर समान रूप से चले जाते हैं, यानी वो संदृष्टि बहुत अच्छी बनाई है वो। हमारे विनोद भाई ने मेहनत बहुत ली थी ये बनाते समय, उन्होंने किया था ना इसका टाइपिंग, विनोद भाई सावला ने। ये समझ में है ना? उसकी संदृष्टि से ये यमाकार समझ में आती है, बराबर। अब आपका प्रश्न क्या था, कितने गुना है? अभी हमने कितने गुना किया? भाग से गुना करके बहुभाग बहुभाग लिया, यानी फिर भी बहुभाग लिया यानी पल्ले के असंख्यात पे भाग गुना हुए ना। अभी आपका प्रश्न का उत्तर आ गया, उसके लिए हमने ये निकाला। वो जीव की बात वो बाद में बताएंगे, जीव कितने होते हैं क्या होते हैं, उसका जब उत्तर प्रकरण आएगा तो हम देखेंगे। अभी अभी यहां आते अपने पल्ले के असंख्यात वे भाग गुणा, असंख्यात गुणा इतना ही लिखा है ना। अभी पेज नंबर 10 पर आ जाना। ये तो हमने योग स्थान की प्ररूपणा देखी, उसके सारे अलग अलग अनुयोग द्वार भी देख लिए। अब कहते हैं प्रदेश बंध स्थान प्ररूपणा। हमने ये बात देखी थी, जितना योग अधिक उतना ही प्रदेश बंध अधिक, यानी समय प्रबद्ध का जो प्रपोर्शन है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू योग स्थान। जहां असंख्यात वे भाग वृद्धि होगी तो प्रदेश में भी समय प्रबद्ध में भी असंख्यात वे भाग की वृद्धि होगी। जहां असंख्यात गुणा योग स्थान चल योग पलटेगा तो वहां समय प्रबद्ध भी असंख्यात गुणा हो जाएगा। इसलिए क्या कहते हैं, यहां देखो प्रदेश बंध प्ररूपणा की अपेक्षा जो योग स्थान है वे ही प्रदेश बंध स्थान है। इतनी विशेषता है कि प्रदेश बंध स्थान प्रकृति विशेष की अपेक्षा विशेष अधिक है। प्रकृति विशेष में हमने देखे थे ना, कौन से प्रकृति में कितने प्रदेशों का बंटवारा होता है, हाँ, वो विशेष अधिक होगी। इन्हें नंबर ऑफ स्थानों की बात है। इस प्रकार प्रदेश बंध स्थान प्ररूपणा समाप्त हुई। उसको तो एक लाइन में बताया कि क्योंकि योग स्थानों को विस्तार से बताया है तो उसी प्रपोर्शन में ये बात बढ़ेगी। अब यहां तक तो हमारी स्थान प्ररूपणा हुई, क्योंकि पहले हमने देखा था, देखो पेज नंबर 3 पर 24 अनुयोग द्वार बताए थे, उसमें से स्थान प्ररूपणा में योग स्थान और प्रदेश बंध प्ररूपणा बताए थे। ये दोनों ही स्थान प्ररूपणा के अंतर्गत आते हैं। ये हमारी बात हो गई। अब उसके बाद क्या है, सर्वबंध और नो सर्वबंध, ये सब अभी प्रदेश बंधों में ही लगाना है। तो कहते सर्व नो सर्व प्रदेश बंध प्ररूपणा, जो सर्वबंध और नो सर्वबंध है उसका यह निर्देश है। निर्देश ने कथन ओग और आदेश, ओग से ज्ञानावरणीय कर्म का क्या सर्वबंध है या नो सर्वबंध है पूछ रहे ना, क्या वो पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, तो बिल्कुल पाया जाता है, सर्वबंध भी है। सर्वबंध कब कहेंगे, नहीं मैक्सिमम बंध जहां होगा सर्व प्रदेश बंधेगी, यानी ज्ञानावरण का उत्कृष्ट संगी पंचेंद्रिय के जो उत्कृष्ट योग होगा वहां पर सर्व प्रदेश बंध होगा, है ना, यही कह रहे। तो कहते सर्व प्रदेश बंध भी है और नो सर्व प्रदेश बंध भी है। सब प्रदेशों को बांधने वाले के सर्व बंध होता है ना, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ परमाणु बांधने वाले सर्व प्रदेश, उसी को उत्कृष्ट कहेंगे। उनसे न्यून प्रदेशों को बांधने वाले जीव के नो सर्व बंध होता है, यानी जिसका योग थोड़ा कम होगा उसके नो सर्व बंध होगा। इसी प्रकार जरूरी नहीं है सर्वबंध में ज्ञानावरणी का जहां कम से कम प्रकृति बनती है, आपने बताया जो 10वें गुण स्थान में, 12वें में क्या बंध नहीं है ना, हाँ 10वें तक बंध है, पर 10वें भी उत्कृष्ट क्यों, क्योंकि नीचे के गुण स्थान में 7 या 8 कर्मों में उसको डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 10वें में उसका उत्कृष्ट होगा, और वो भी किसको, पहले समय में क्यों अंतिम समय में, समय से क्या लेना देना है। ना क्षपक और उपशम से लेना देना, कहीं पर भी योग उत्कृष्ट हो सकता है। क्योंकि हमने देखा योग का मतलब उसके गुणस्थान से नहीं होता, संगी पंचेंद्रिय है बस इतना ही लेना। अनुभाग में हम सर्व संकलेश ठीक के सर्व विशुद्ध उसकी बात देखते थे। योगों में कोई रिले वो पहले समय में हो सकता है, अंत समय में भी हो सकता है। हाँ, जहां मिनिमम प्रकृतियां बन रही है वहां उसमें बंटवारा अधिक होगा, बस इतनी बात है। हल में है ना, अभी ग्यारहवें बारहवें में क्या अकेले साता वेदनीय बनता है, उसी को पूरा ही माल मिलता है, उसी की तो बात ही नहीं है। ज्ञानावरण में सर्व बंधे ने मैक्सिमम प्रदेश बंध कहां होगा, तो पहले हमको देखना है कि योग ज्यादा होना चाहिए। पर योग ज्यादा होगा और पहले गुणस्थान में आठ प्रकृतियां बनती है तो आठवां भाग मिलेगा, और तीसरे गुणस्थान में सात बनती है तो सातवां भाग मिलेगा, तो छह कहां बनती है, तो दसवें में बनती है। हमारा नौ सर्वबंध सर्वबंध की बात चल रही। देखो पेज नंबर 11 पर प्रदेश बंध में उस अनुभाग का बंटवारा कैसा होगा, जिसका उसका होता है। अनुभाग का बंटवारा नहीं होता, अनुभाग का बंध होता है जिसका उसका अपना अपना। हाँ, वो तो विशुद्धि में प्रशस्त प्रकृतियों का ज्यादा होता है, हमने देखा था। हाँ, वो भी देखो सातावेदी तो ग्यारहवें बारहवें तेरहवें को भी बनती है, पर हमने अनुभाग बंध कहाँ तक देखा था, दसवें तक, क्योंकि जब तक कषाय है तब तक अनुभाग बनता है। यहाँ अपनी बात प्रदेश बंध की है, योग में लेना। तो योग में वो क्षपक श्रेणी वाला है या उपशम श्रेणी वाला है उससे कोई मतलब नहीं। जिसके योग ज्यादा है वो पहले समय में होगा, अंतिम समय होगा, मध्य समय में होगा, कभी भी हो सकता है। तो यहाँ क्या प्रश्न पूछा, पहली लाइन में 11 पेज के पहली लाइन में ज्ञानावरणीय कर्म का क्या सर्वबंध है क्या नौ सर्वबंध है, तो सर्वबंध भी है, किसके है वो वहां बताएंगे, कहा आगे बताएंगे। हाँ, और नौ सर्वबंध भी है तो सब प्रदेशों को बांधने वाले के सर्वबंध होता है। तो हमने यहाँ विचार किया कि मैक्सिमम सर्व प्रदेश कौन बांधेगा, तो जहां आठ कर्म बंध रहे हैं, क्योंकि ज्ञानावरण में छठवां भाग जो कुछ साधिक में जला जाएगा, क्योंकि वेदनीय नहीं है, मोहिनी भी नहीं है, तो मैक्सिमम तो ज्ञानावरण दर्शन और अंतराय में विभाजित करके मिलेगा, तो वहां होगा दसवें गुणस्थान में जिसके उत्कृष्ट योग है उसके होगा। उनसे न्यून प्रदेशों को बांधने वाले जीव के नौ सर्वबंध होता है, अन्यत्र सर्वत्र जो मैक्सिमम योग वाला नहीं है कोई भी एक इंद्रिय से लेकर सब, वो सारे कैसे है, नौ सर्वबंध वाले। इसी प्रकार सात कर्मों के विषय में जानना चाहिए, यानी कोई भी कर्म हो उसमें मैक्सिमम जहां बनते हैं उसको सर्वबंध कहेंगे, जहां मैक्सिमम नहीं बनते थोड़े कम बनते हैं तो उसको नौ सर्वबंध कहेंगे। ये आसान है ना, प्रदेश बंध मैक्सिमम चाहिए। ज्ञानावरण में मैक्सिमम कब होगा, जब कम से कम प्रकृति बनती है, तो ज्ञानावरण में छह कर्मों का बंध दसवें में होता है। हाँ, और वहां जो उत्कृष्ट योग जब होगा तब होगा। मैक्सिमम परमाणु, अधिकाधिक परमाणु कौन बांधता है, छह कर्म बांधते हैं, छह कर्म का बंधक उत्कृष्ट योग वाला। दसवां गुणस्थान और बाकी शेष जो है वो सारे नौ सर्व बंध कर रहे हैं ना। दसवें में भी जो उत्कृष्ट योग वाला नहीं होगा उसको नौ सर्वबंध होगा, जहां पहले गुणस्थान में नौ सर्वबंध होगा, जो सर्व नहीं वो सारे क्या है, नौ सर्व है, इतना ही लेना। इसी प्रकार सात कर्मों के विषय में जानना चाहिए, आयु में भी ऐसा ही लेना, कहीं पर भी लेना। आयु का तो आठ कर्मों का बंध होता है तभी आयु बन रही है, तो उसके आठवां भाग जो कुछ कुछ कम आठवां भाग उसमें मिलता है तो उत्कृष्ट योग के साथ बंधेगे तो उसको उत्कृष्ट। अभी उत्कृष्ट योग किसको होगा क्या होगा उसकी बात करेंगे अभी। जब आयु बंध रही तभी होगा बस, योग उत्कृष्ट चाहिए। हाँ, वो संगी पंचेंद्री के होगा, उसकी बात करेंगे। हाँ, तथा शेष कर्मों का वहां सॉरी इसी प्रकार सात कर्मों के विषय में जानना चाहिए। अब नरक गति में एक एक मार्गणा में बता रहे, नरक गति में मोहिनी और आयु कर्म का भंग ओघ के समान है। तथा शेष कर्मों का वहां नौ सर्वबंध है, ये क्या कहना चाहते हैं? देखो हमने क्या देखा, सर्वबंध होता है सब प्रदेशों को बंद करने वाले सर्वबंध होता है, कम प्रदेशों को बांधने वाले नौ सर्वबंध है। तो कहते कि मोहिनी और आयु के लिए ऐसा ही होगा क्योंकि ओघ में भी तो ऐसा ही था। अब शेष कर्मों में नौ सर्वबंधक क्यों कहा, लक्ष्मी आप बताएंगे शेष में क्यों? हाँ, जगन्य होगा ही नहीं, उसके लिए उत्कृष्ट भले कहेंगे परंतु ओघ की अपेक्षा वो उत्कृष्ट नहीं होगा, क्योंकि उत्कृष्ट कहाँ, जहाँ छह ही कर्म बनते हैं वहां उत्कृष्ट होता है। तो यहाँ आठों या सातों बंधेंगे तो उनके लिए नौ सर्वबंध ही है ये कह रहे। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। नहीं नहीं डिस्ट्रीब्यूशन कब, देखो छह कर्म बनते ऐसा कभी होगा ही नहीं, मोहिनी तो हमेशा बंद ही रहे, सात या आठ कर्म तो बंद ही रहे हैं, इसलिए उसके वो ओक की अपेक्षा जो सर्वबंध है वो यहाँ नहीं पाया जाएगा। हाँ, उसको ओ की अपेक्षा का ऐसा ही कहते। विशेषण, इन दोनों मिले हुए अधिकारों में प्रदेशों की अपेक्षा, दोनों मिले हुए अधिकार ने सर्वबंध और नौ सर्वबंध, प्रदेशों की अपेक्षा सर्वबंध और नौ सर्वबंध का विचार ओघ और आदेश से किया गया है। ओघ से विचार करते समय ज्ञानावरणादि आठों कर्मों का सर्वबंध और नौ सर्वबंध यह दोनों ही प्रकार का बंध बतलाया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि अपने अपने योग्य उत्कृष्ट योग के होने पर जब ज्ञानावरणादि कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेशों का बंध होता है तब वहां उस कर्म की अपेक्षा सर्वबंध कहलाता है, और इससे न्यून प्रदेशों का बंध होने पर नौ सर्वबंध कहलाता है। मार्गणाओं में से मात्र नरक गति की अपेक्षा विचार किया है और शेष मार्गणाओं में इसी प्रकार से जानने भर का संकेत किया है। नरक गति में मोहिनी और आयु कर्म का प्रदेश बंध ओघ के समान संभव होने से वहां इन दो कर्मों का तो ओघ समान सर्वबंध और नौ सर्वबंध कहा है, तथा शेष कर्मों का नौ सर्वबंध बतला है, क्योंकि ओघ से इन छह कर्मों में सबसे अधिक प्रदेशों का बंध उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी में होता है, जो दोनों श्रेणियां नरक में संभव नहीं है। वो केवल उन्होंने श्रेणी कहा परंतु श्रेणी में भी दसवें में, क्योंकि जहां छह ही कर्म बनते हैं तब। इसके अतिरिक्त अन्य जितनी मार्गणाएं हैं यानी जो जिनमें जिन मार्गणाओं में श्रेणी नहीं है उनमें ऐसा समझना, उनमें यथासंभव अपनी अपनी विशेषता को देखकर आठों कर्मों का या जहां जितने कर्मों का बंध संभव हो उनका सर्वबंध और नौ सर्वबंध यथासंभव जानना चाहिए, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अब आगे के दो मार्गणा सॉरी योग उसके अनुयोग द्वार प्रदेश बंध में ही चार और पांच नंबर का उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध प्ररूपना, जिसको सर्वबंध कहा था ना उसी को हम उत्कृष्ट प्रदेश बंध कहेंगे। जो उत्कृष्ट बंध और अनुत्कृष्ट बंध है उसका यह निर्देश है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। ओघ से ज्ञानावरण कर्म का क्या उत्कृष्ट बंध होता है या अनुत्कृष्ट बंध होता है? तो उत्कृष्ट बंध भी होता है और अनुत्कृष्ट बंध भी होता है। सबसे उत्कृष्ट प्रदेशों को बांधने वाले के वो वाल के हुआ वाले के उत्कृष्ट प्रदेश बंध होता है। ऊपर क्या बताए, सब प्रदेशों को बांधने वाले, और यहाँ क्या करे उत्कृष्ट प्रदेशों को बांधने वाले, बात एक ही है। और उनसे न्यून प्रदेशों को बांधने वाले के अनुत्कृष्ट बंध होता है, ये प्रदेशों की बात चल रही है, नंबर ऑफ परमाणु। इसी प्रकार सातों कर्मों के विषय में जानना चाहिए, ये होता है कि नहीं होता, बस इतनी चर्चा यहाँ पर। नारकियों में मोनी और आयु कर्म का भंग ओघ के समान है, वहां शेष कर्मों का अनुत्कृष्ट बंध होता है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए, बात वही है जो हमने सर्व बंध और नौ सर्व बंध में देखी थी। इसी का विशेषार्थ 12 नंबर के पृष्ठ पर आते हैं। देखो, इन दोनों अनुयोग द्वारों में पूरा स्पष्टीकरण सर्वबंध और नौ सर्वबंध अनुयोग द्वारों के विवेचन के समय जिस प्रकार कर आए हैं उसी प्रकार कर लेना चाहिए। ये समझ में आई बात? जिसको हमने सर्वबंध कहा था उसी को यहाँ उत्कृष्ट प्रदेश बंध कह रहे हैं। तो जो उन्होंने उसका जो स्पष्टीकरण बताया था वो यहाँ पर भी लागू होता है, क्योंकि तो उसी प्रकार कर लेना चाहिए। पेज नंबर 12, क्या कहते हैं? इन दोनों अनुयोग द्वारों में कौन से दो? उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट। पूरा स्पष्टीकरण सर्वबंध और नौ सर्वबंध अनुयोग द्वारों के विवेचन के समय जिस प्रकार कर आए हैं उसी प्रकार कर लेना चाहिए। जिस प्रकार सर्वबंध से उत्कृष्ट रूप से बंधे हुए सब प्रदेश विवक्षित है, उसी प्रकार उत्कृष्ट बंध में भी उत्कृष्ट रूप से बंधे हुए प्रदेश विवक्षित है। और जिस प्रकार नौ सर्वबंध में न्यून बंधे हुए प्रदेश विवक्षित है, उसी प्रकार अनुत्कृष्ट बंध में भी न्यून बंधे हुए प्रदेश विवक्षित है। इनमें केवल अंतर इतना है कि उत्कृष्ट बंध में समुदाय की मुख्यता है और सर्वबंध अवयव प्रधान है। समझ में आती है? उत्कृष्ट बंधे ने उसका समूह है, उसकी पूरी संख्या लिए एट ए टाइम, और सर्व ने सभी बंधे के नहीं बंधे, इस तरह से एक एक को गिनते हुए सभी बंधे के। समुदाय के मुख्य, हाँ, जैसे जैसे मैक्सिमम 100 है, तो सभी 100 बंधे के नहीं बंधे तो उसको हम सर्व बंधे कहेंगे। और समुदाय रूप से कितने? 100 है, तो टोटल 100 बंधे की नहीं बंधे तो उसको हम उत्कृष्ट कहेंगे। ख्याल में आए ना बात? पूरा टोटल लेंगे तो टोटल की अपेक्षा उत्कृष्ट कहेंगे, और हरेक उसमें से आया कि नहीं उसको सर्वबंध कहेंगे। हाँ, ना 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 ना, नंबर ऑफ यहाँ प्रकृति बंध की बात ही नहीं लेना है, एक एक प्रकृति में प्रदेश कितने बनते उसकी बात चल रही है। ज्ञानावरण मूल प्रकृति है तो उसमें नंबर ऑफ प्रदेश टोटल कब बंधेंगे? सभी कभी बंधेंगे, उत्कृष्ट रूप से कभी बंधेंगे? दसवें गुणस्थान में जब 6 कर्म बनते हैं तो पूरे समय प्रबद्ध का 6वां भाग मिलता है। पर समय प्रबद्ध कब ज्यादा होगा? तो उत्कृष्ट योग में ज्यादा होगा। तो जो मैक्सिमम, जो वहां पॉसिबल सभी बनते हैं उसी को कहेंगे उत्कृष्ट बनते हैं। सभी और मैक्सिमम इनमें अंतर है ना? सभी का अर्थ है उसमें एक एक को मुख्यता लिया हमने, सभी है कि नहीं है, और सबका मिलकर जो टोटल है उसको उत्कृष्ट कह दिया। बात तो वही है, जिसको सर्वबंध कहते हैं उसी को उत्कृष्ट बंध कहते हैं। यानी कहा ना, उत्कृष्ट बंध में समुदाय ने सब, समुदाय ने टोटल लेना, और सर्वबंध में ईच एंड एवरी उसमें से आया कि नहीं है, जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा 100 तक सभी आए कि नहीं, उसको कहेंगे सर्वबंध। अब ये तो उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट या सर्व नौ सर्व की बात हुई, अब यहाँ उल्टा लेना है, जघन्य प्रदेश बंध कब होगा इसका जरा हम विचार करते हैं। जघन्य करते मिनिमम चाहिए, तो पहले में पहले 8 कर्म बनने चाहिए। हाँ, और फिर भी उसमें योग मिनिमम चाहिए। देखो तो जघन्य अजघन्य प्रदेश बंध प्ररूपना, जो जघन्य बंध और अजघन्य बंध है उसका यह निर्देश है, ओघ और आदेश। ओघ से ज्ञानावरण कर्म का क्या जघन्य बंध होता है? या अजगण्य बंध होता है, ये प्रश्न पूछा है। तो जगन्य बंध भी होता है और अजगण्य बंध भी होता है। सबसे जगन्य प्रदेशों को बांधने वाले के जगन्य बंध होता है और उनसे अधिक प्रदेशों को बांधने वाले के अजगण्य प्रदेश बंध होता है। यह दिया होगा ना, वो तो उपपाद में होगा ना, सबसे जगह में। क्योंकि असंख्यात गुणा आगे योग बढ़ेगा एकांत वृद्धि में और परिणाम में उससे भी ज्यादा होगा, उपपाद में लेना पड़ेगा। हाँ, आयु का तो क्योंकि आठ बनते हो, वहाँ आयु को लेना। हाँ देखो क्या कहते हैं कि होता है कि नहीं पूछ रहे। तो जगन्य बंध भी होता है और अजगन्य बंध भी होता है। सबसे जगन्य प्रदेशों को बांधने वाले के जगन्य बंध होता है और उनसे अधिक प्रदेशों को बांधने वाले के अजगन्य बंध होता है। इसी प्रकार शेष सात कर्मों की अपेक्षा जानना चाहिए। नरकों में ओग की अपेक्षा अजगण्य बंध होता है। नरक की अपेक्षा जगन्य की नहीं बताए, ओग की अपेक्षा अजगण्य है। जैसे हमने सर्व नौ सर्व में या उत्कृष्ट में भी देखा था, ओग का जो उत्कृष्ट है वो नरक में नहीं बन सकता है क्योंकि उत्कृष्ट दसवें गुण स्थान में था। हाल में आती बात यह जगन्य कहाँ है, वो सूक्ष्म निगोद लब्धि पर्याप्त को भोग के पहले समय में, वो तीर्यंच मार्गणा में होगा और वो एक इंद्रिय में होगा। वो कहाँ कहाँ, जहाँ वो निगोद भी होते हैं उसको वहां ले सकते हैं, परंतु जिस मार्गणा में वो निगोद नहीं है तो ओग के जगन्य की अपेक्षा ये सारे अजगन्य हो गए क्योंकि वो भी उपपाद सूक्ष्म निगोद लब्धि पर्याप्त। तो जिन जिन मार्गणाओं में वो सूक्ष्म निगोद लब्धि पर्याप्त इंक्लूडेड है उनको वहां हम कहेंगे वो जगन्य होता है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। विशेषार्थ, नौ सर्व बंध से जगन्य बंध में क्या अंतर है? अजगन्य भी नौ सर्व कहलाएंगा, जो उत्कृष्ट नहीं वो सारे ही नौ सर्व में आते हैं। इसका स्पष्टीकरण अनंतर पूर्व कहे गए विशेषार्थ से हो जाता है। नौ सर्व बंध किसको कहा था? जो मैक्सिमम नहीं वो सारा नौ सर्व बंध है। ये जगन्य भी नौ सर्व में भी आ गया, परंतु जगन्य वो नौ सर्व ही होता है ऐसा नहीं कहेंगे। जगन्य जगन्य तो नौ सर्व है ही है, जगन्य तो नौ सर्व बंध है, पर नौ सर्व बंध सभी जगन्य नहीं है, ये कहना। यहाँ एक विशेष बात यह कहेंगे कि जहाँ नरकों में अजगन्य बंध क्यों है, इसका खुलासा ओघम पड़ुच्च इस पद द्वारा किया है। इस आधार से सब मार्गणाओं में कहाँ ओग की अपेक्षा जगन्य बंध संभव है और कहाँ अजगन्य बंध संभव है, इसका खुलासा कर लेना चाहिए। यानी उसमें गति अपेक्षा से तीरंच गति को लेंगे हम, इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा एक इंद्रियों को ले लेंगे हम, काय मार्गणा गति इंद्रिय काय मार्गणा की अपेक्षा स्थावर काय में पांच भेद होते हैं, वनस्पति काय को लेना पड़ेगा। काय मार्गणा की अपेक्षा छह भेद होते, स्थावर कहेंगे तो पृथ्वी काय को भी लेना पड़ेगा। नहीं समझे, निगोद को लेना है। वनस्पति काय को लेना पड़ेगा काय मार्गणा पे। योग मार्गणा की अपेक्षा किसको कहेंगे? कर्मण का योग या औदारिक मिश्र का पहला समय भी हो सकता। हाँ, क्योंकि हमने देखा था आपकी उसमें भी योग की मिश्र तो डायरेक्ट जाने वाले को, हाँ यानी वो ईशु गति से जाने वाले को था। अब ये समझ लेना। अब विशेषांक पढ़ते हैं, वही पढ़ रहे थे ना, उगम पड़ुच्च बात है, उसका खुलासा कर लेना चाहिए। हो गया ये सब। अब ये प्रदेश बंध में सादी अनादि ध्रुव अध्रुव प्रदेश बंध प्ररूपणा की बात करेंगे। जो सादी बंध अनादि बंध, ध्रुव बंध और अध्रुव बंध है, उसका यह निर्देश दो प्रकार का है, ओवर आदेश। देखो प्रकृति यानी प्रदेश बंध में सादी, केवल हम प्रदेश बंध कहेंगे तो प्रदेश बंध में सादी कहो, वो प्रकृति उसको नहीं कहना। ये सादी अनादि उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट में लगाना है, उत्कृष्ट बंध सादी है कि नहीं ये देखना है। वो प्रकृति बंध ही सादी हो गई, वहां नहीं लेते। ये चार में ये उत्कृष्ट लगाना पड़ता है, ये उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जगन्य अजगन्य लेने है ना, उसको रखकर उसमें सादी अनादि ध्रुव अध्रुव लगाना है, ये उसका अर्थ होता है। डायरेक्ट नहीं लगाते, जैसे हमने स्थिति में भी देखा था, अनुभाग में भी देखा था, कैसे लेना है उसमें, ये सादी अनादि ध्रुव अध्रुव कहाँ लगाते, उत्कृष्ट या जगन्य में, अनुत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट में, इस तरह से। देखो अभी पढ़ेंगे, देखो जो सादी बंध अनादि बंध ध्रुव बंध और अध्रुव बंध है, उसका यह निर्देश दो प्रकार का है, ओवर आदेश। ओव से छह कर्मों का उत्कृष्ट प्रदेश बंध, तो उत्कृष्ट प्रदेश बंध कब होता है, दसवें में, तो सादी होगा कि नहीं होगा, सादी होगा। अनादि होगा क्या, अनादि नहीं, अनादि कैसे हो सकता है, अरे अभव्य तो कोई होगा ही नहीं उत्कृष्ट। दसवां गुणस्थान लेना है, यानी दसवां गुणस्थान ही कभी हुआ नहीं था, वो अनादि से तो हो नहीं सकता किसी को, यानी वो तो अनादि उसमें होता ही नहीं है, सादी ही होगा, सादी ही होगा। और सादी होगा तो क्या होगा, अध्रुव होगा, क्योंकि अभी मिटने वाला है अभी वो, क्योंकि एक समय को होकर फिर अनुत्कृष्ट भी होगा और बंध ही मिट जाएगा, तो सादी और अध्रुव होगा। यहां तक समझ में ही बात, तो छह कर्मों का उत्कृष्ट प्रदेश बंध की बात आ गई। अब जघन्य प्रदेश बंध, जघन्य कब होता है, हाँ सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त जघन्य योग में, उपपाद योग में, वो क्या अनादि से है कि सादी है, वो भी सादी होगा और वो भी अध्रुव होता है। सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त निगोद। अब अजघन्य प्रदेश, अजघन्य जो जघन्य नहीं है, अजघन्य कैसा अनादि होगा, वो सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त में भी था ना, वो तो केवल अनुत्कृष्ट में चारों लगेंगे। देखो इसमें उत्कृष्ट में भी सादी और अध्रुव दिखा, जघन्य में भी सादी और अध्रुव लिया, और अजघन्य प्रदेश बंद, अजघन्य आप कहेंगे अजघन्य कौन सा, जो जघन्य नहीं वो सारे अजघन्य है, उसको भी सादी और अध्रुव कहेंगे, क्योंकि कभी जघन्य कभी अजघन्य होता रहता है। अजघन्य कोई भी करेगा ना, जो सूक्ष्म निगोद छोड़कर बाकी सारे जो कैसे हैं अजघन्य कर रहे हैं, सादी क्यों, जघन्य के बाद उसकी आदि होगी कि नहीं, उसको सादी कहेंगे, क्योंकि जघन्य अजघन्य होता रहता है उसमें, इसलिए जघन्य को भी सादी कहा, अजघन्य को भी सादी कहा, यानी उसमें सादी पॉसिबल है कि नहीं ये बात बता रहे हैं। और अध्रुव हुआ तो ये उत्कृष्ट भी, जघन्य भी और अजघन्य भी सादी और अध्रुव है। अब अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध क्या सादी बंध है, क्या अनादि बंध है, क्या ध्रुव बंध है, क्या अध्रुव बंध है, तो कहते कि अनादि से तो अनुत्कृष्ट था ही, क्योंकि उत्कृष्ट तो श्रेणी में किया उसने दसवें में, दसवें गुणस्थान में, तो जब तक नहीं किया तो अनादि से तो अनुत्कृष्ट था ही था। अब सादी कब कहेंगे, यानी उसने दसवें में एक बार बंद किया उत्कृष्ट, फिर अनुत्कृष्ट किया, तो उत्कृष्ट के बाद अनुत्कृष्ट कभी भी कर सकते, उसके लिए ऊपर से उतरना चाहिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं। उत्कृष्ट करने के बाद अनुत्कृष्ट किया तो सादी हो गया, तो सादी भी पॉसिबल है, अनादि तो है ही है, अब ध्रुवबंध किसको कहेंगे? अनुत्कृष्ट, जो कभी श्रेणी ही नहीं चढ़ेगा अभव्य में, ध्रुवबंध ही कहेंगे। और अध्रुव तो है ही है, क्योंकि वो तो बंध का अभाव करके मोक्ष में जाने वाला है, तो अध्रुव बंध भी है। तो अनुत्कृष्ट है वो सारा क्या हो गया है, चारों उसमें लगेंगे। यानी ये जो सादे अनादि ध्रुव अध्रुव की बात है ना, वो किसमें लगानी है? उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य अजघन्य पर लगानी है। तो हमने देखा उत्कृष्ट जघन्य और अजघन्य है वो सादि और अध्रुव है, और अनुत्कृष्ट जो है वो सादि अनादि ध्रुव अध्रुव चारों प्रकार का है। यहां तक बात समझ में आई? फिर से लेना है आगे? चलो आगे। जो उत्कृष्ट नहीं तो अनादि से क्या था? अनुत्कृष्ट था, इसलिए उसमें अनादि लिया। उत्कृष्ट के बाद फिर अनुत्कृष्ट हो सकता है, दसवें में है, तो इसलिए सादि भी लिया। ध्रुव बंध क्यों? क्योंकि अनुत्कृष्ट ही कायम रहेगा अभव्य की अपेक्षा, इसलिए ध्रुव लिया। और अध्रुव अभी बंध का अभाव करके अभी मोक्ष भी चला जाएगा, इसलिए वो तो अध्रुव लिखा। मोहनी और आयु कर्म का उत्कृष्ट प्रदेश बंध, अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध, जघन्य प्रदेश बंध और अजघन्य प्रदेश बंध, क्या सादि बंध है, क्या अनादि बंध है, क्या ध्रुव बंध है, क्या अध्रुव बंध है। आयु में तो सादि होता ही होता है, कोई भी क्यों ना हो, है ना? वैसे मोहनी में भी देखो, मोहनी का भी उत्कृष्ट कब होगा? अभी सात कर्म बनते तब। हाँ, तो शादी होगा ना, वो तो कभी आठ बनते कभी सात बनते हैं, तो शादी तो होना ही होना है। और अध्रुव बंध है, यानी उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य अजघन्य सब ले लिए उसमें, तो शादी भी अध्रुव। इसी प्रकार ओघ के समान अचक्षु दर्शन वाले और भव्य जीवों के जानना चाहिए, क्योंकि उनमें भी श्रेणी होती है। इतनी विशेषता है कि भव्य जीवों के ध्रुव भंग नहीं होता। उस फिर से कौन, मोहनी में कौन सा लगाना चाहते हैं?
चारों पद लगाए उन्होंने,
पहले कौन सा लेना है, किस पर चारों पद लगाना है, एक एक पर कंसीडर करो। उत्कृष्ट पर लगाना चाहते क्या, अनुत्कृष्ट पर? उत्कृष्ट का कंसीडर करो, उत्कृष्ट प्रदेश बंध मोहनी का कब होगा? जब सात कर्म बन रहे संगी पंचेन जी को, तो वो शादी है क्या? नहीं है, शादी भी है और अध्रुव भी है, बराबर है? हाँ, तो उत्कृष्ट की बात हो गई। अब अनुत्कृष्ट वही तो मैं कह रही हूँ, एक एक पर, एक एक पर, चारों पर चारों पद बताए, बराबर है ना? चारों पर बताए। वैसे ऊपर नहीं था, ऊपर छह कर्मों में उत्कृष्ट था तो दसवें में था। अब इनका उत्कृष्ट कहाँ होता है? मिथ्या दृष्टि के भी होता है, अभव्यों के भी होता है। उत्कृष्ट कब होगा? जब सात का बंद कर रहा है और उत्कृष्ट योग है संगी पंचेन जी को, तो वो तो सादी ही होना चाहिए, अनादि का तो नहीं कह सकते, शादी है। और अध्रुव है, अध्रुव क्यों? क्या हमेशा उत्कृष्ट योग होगा क्या? अभी अनुत्कृष्ट की बात करते, अनुत्कृष्ट कब कहे होगा? उत्कृष्ट के बाद वो अनुत्कृष्ट हो सकता है कि नहीं, तो उसको क्या कहें? शादी कहेंगे हम, शादी कहेंगे उसको। और अध्रुव होता ही होता है। अब जघन्य की बात, जघन्य कब होगा? वही वो जो निगोद को सूक्ष्म लिखा। हाँ, और अजघन्य जो वो नहीं कर रहे वो तो अजघन्य है, जघन्य के बाद अजघन्य भी होगा, इसलिए वो भी शादी और अध्रुव लिया। मैंने चारों पदों पर शादी और अध्रुव लगाएंगे। केवल भव्य जीवों में क्या है? ध्रुव भंग नहीं होता। शेष सब मार्गणों में उत्कृष्ट प्रदेश बंध, अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध, जघन्य प्रदेश बंध और अजघन्य प्रदेश बंध, साधी और अध्रुव दो प्रकार का होता है। क्योंकि वहाँ छह प्रकार में तो साधी और अध्रुव कहा और अनुत्कृष्ट में सब लगाए थे, और इनमें चारों ही प्रकार के साधी और अध्रुव हो जाते हैं, क्योंकि शेष मार्गणाओं में यानी जिसमें वो दसवा गुण स्थान नहीं लिया इसे शेष मार्गणा लिए। इसी का विशेषार्थ बताएंगे अभी, देखो विशेषार्थ देखते हैं। यहाँ मौनी और आयु कर्म के सिवा शेष छह कर्मों का उत्कृष्ट प्रदेश बंध सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में होने से, इसके पहले अनादिकाल से इनका अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध होता रहता है, इसलिए तो इन छह कर्मों का अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध अनादि है। और उत्कृष्ट प्रदेश बंध होने पर जब पुनः वह जीव गिरकर अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध करने लगता है तब वह साधी है, ये गिरने की जरूरत नहीं है। हाँ उसी गुण स्थान में भी उत्कृष्ट के बाद अनुत्कृष्ट हो सकता है। गिरने के बाद तो आठ कर्मों का बंद, सात कर्मों का बंद होने लगेगा, इसलिए भी होगा। नहीं नहीं गिर कर रहने दो। और उसी गुण स्थान में भी आगे तो लिखा है ना उत्कृष्ट प्रदेश बंद करने लगता है तब वह साधी है। यह तो हो गया, इसलिए उसको साधी कहा। किसके लिए? उत्कृष्ट के लिए। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध में ध्रुव अभव्यों के लिए ध्रुव बंदी है और अध्रुव ये भव्यों के लिए, ये भेद भव्य और अभव्य की अपेक्षा से है। यही कारण है इन छह कर्मों का अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध साधी आदि के भेद से चारों प्रकार का बतलाया। ये समझ में आई ना बात? अनुत्कृष्ट के लिए चार बताए छह कर्मों के, इनके उत्कृष्ट प्रदेश बंध सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में होता है, इसलिए वह साधी और अध्रुव दो प्रकार का है यह स्पष्ट ही है। अब रहे जगन्य और अजगन्य बंध, सो इनका जगन्य बंध सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्त के भव के प्रथम समय में संभव है, वो भी निगोद किया लिया था हमने, और इसके बाद अजगन्य बंध होता है, क्योंकि एकांत वृद्धि शुरू होते उसी जीव को अन्य जीव की अपेक्षा अजगन्य होता रहता है। यतः इस पर्याय का प्राप्त होना पुनः पुनः संभव है, अतः ये दोनों बंध साधी और अध्रुव इस प्रकार दो प्रकार के ही कहे हैं। समझ में आई बात? पहले नहीं था साधी, फिर हुआ तो साधी कहेंगे, और अनेक बार हो सकता है तो साधी और अध्रुव कहेंगे। ये जगन्य की भी और अजगन्य की बात हो गई। ये समझ में आई बात? ये छह की बात पता। अब मौनी और आयु के, मौनी और आयु वहां दसवें में नहीं बन रही थी, तो मोहनी और आयु के उत्कृष्ट आदि चारों प्रकार के बंध साधी और अध्रुव ही है, कारण कि आयु कर्म तो अध्रुव बंधी है ही, क्योंकि उसका बंध विवक्षित भव के प्रथम त्रिभाग में या उसके बाद द्वितीय आदि त्रिभागों में होता है। यदि वहां भी न हो तो अंत में अंतर्मूर्त आयु शेष रहने पर होता है, इसलिए इसके उत्कृष्ट आदि चारों साधी और अध्रुव यह स्पष्ट ही है। समझ में ही ना बात? आयु की बात तो समझ में आती। रहा मोहनीय कर्म, सो इसका उत्कृष्ट प्रदेश बंध मिथ्या दृष्टि के भी होता है, और जघन्य प्रदेश बंध सूक्ष्म एकेंद्रीय लब्धि अपर्याप्त के भव के प्रथम समय में होता है। यतः इन दो प्रकार के बंधों का पुनः पुनः प्राप्त होना संभव है, और इसके बाद क्रमशः अनुत्कृष्ट और अजगन्य प्रदेश बंधों का भी पुनः पुनः प्राप्त होना संभव है। अतः ये चारों प्रकार के बंध साधी और अध्रुव ये दो प्रकार के कहे गए। यानी मोहिनी में क्यों कहना है, तो मैं जहाँ सात कर्मों का बंध हो रहा है वहाँ उत्कृष्ट होगा, वो तो साधी होगा ही होगा और पुनः पुनः भी होता रहेगा, इसलिए अध्रुव भी है। जगन्य तो सूक्ष्म निगोद्रव्य पर्याप्त के था और अजगन्य भी जगन्य के बाद अजगन्य भी होता रहता है, इसलिए साधी और अध्रुव बताए। अचक्षु दर्शन और भव्य मार्गणा सूक्ष्म सांप्राय के आगे तक भी संभव है, अतः इनमें ओघ प्ररूपणा अविकल घटित हो जाने से इनकी प्ररूपणा ओघ के समान कही है, मात्र भव्य मार्गणा में ध्रुवभंग संभव नहीं है। शेष सब मार्गणाएं बदलती रहती है, अतः उनमें सब कर्मों के उत्कृष्ट आदि चारों के साधी और अध्रुव ये दो ही भंग कहे हैं। यहाँ इतना विषय जानना चाहिए, जिन मार्गणाओं में जितने कर्मों का बंध संभव हो तथा ओघ या आदेश से उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जगन्य और अजगन्य बंध संभव हो उसी अपेक्षा से ये भंग घटित करने चाहिए। जब हम उत्कृष्ट कहेंगे नरक गति में तो ओघ की अपेक्षा उत्कृष्ट है क्या, गति की अपेक्षा उत्कृष्ट है, उसको हम देखना पड़ेगा, ये कह रहे। अब ये तो बात उन्होंने बता दी, अब उसका स्वामित्व हम देखेंगे। ये प्रदेश बंध का स्वामित्व, प्रदेश बंध का स्वामित्व का अर्थ क्या है, उत्कृष्ट है कि जगन्य है, उसकी बात यहां करेंगे। पहले उत्कृष्ट की बात बताएंगे। तो स्वामित्व दो प्रकार का है, जगन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है, उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। हमको ये देखना है कि किसी मूल प्रकृति की बात है ना, तो किसी मूल प्रकृतियों में मैक्सिमम द्रव्य कब जाएगा, तो जब उसका योग उत्कृष्ट होगा, एक बात। और कितनी प्रकृतियां मूल में बनती है, आठ बनती है कि सात बनती है कि छह बनती है, उसकी अपेक्षा से देना है। तो मोहिनी आयु को छोड़कर छह कर्मों का उत्कृष्ट यानी उसमें कब जाएगा, तो दसवें गुण स्थान में, वो उपशामक हो या क्षपक हो। देखो अब यहाँ पढ़ेंगे, ओग से छह कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है, जो अन्यतर उपशामक या क्षपक छह प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है और उत्कृष्ट योग वाला, ये कंडीशन है। अनुभाग में तो नियम से वो तो उत्कृष्ट बंध जो कुछ ज्ञान इसका कर रहा था, किसका, सातावेदने का वगैरह का, हाँ यहाँ उत्कृष्ट योग वाला लेना है। वो कहीं पर भी हो सकता है, पहले समय में, चढ़ते समय में, उतरते समय में, कहीं पर भी होगा। वह उक्त छह कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। मोहिनी के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है, जो चारों गति का पंचेन्द्रिय, संगी, मिथ्या दृष्टि या समय दृष्टि। क्योंकि मोहिनी के लिए क्या है, बस सात कर्मों का बंध कर रहा है पर संगी पंचेन्द्रिय, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि हो या समय दृष्टि हो, जीव सब पर्याप्तियों से पर्याप्त है, सात प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है, उत्कृष्ट योग वाला है। सब पर्याप्तियों से पर्याप्त इसलिए लिया, ना उपपाद योग है ना एकांत वृद्धि वाला है, परिणाम योग में भी उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट योग वाला है और उत्कृष्ट प्रदेश बंध कर रहा है, वह उक्त सात कर्मों के उत्कृष्ट नहीं नहीं मोहिनी की बात, उक्त कर्मों के चाहिए, सात मत लिखो, हाँ देखो मिथ्या दिट्ठी समय दिट्ठी से वहां सवाई पजति पजते से सत्यविद बंदे से उक्कस जोगी से उक्कस पदेश बंदे वट्टमाणगस्स, यानी वो सात कर्मों के नहीं, उक्त कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंदे का स्वामी। उक्त है यानी कौन, मोहिनी का। आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है, जो चारों गति का पंचेन्द्रिय, संगी, मिथ्या दृष्टि या समय दृष्टि जीव। आयु इन जनरल बात नहीं, कौन सी आयु उसकी बात नहीं है, सब पर्याप्तियों से पर्याप्त है, आठ कर्मों प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है, क्योंकि आयु बंधेगी तभी तो उसका बंध उत्कृष्ट या जगन्य जो कुछ होगा है ना, और उत्कृष्ट योग वाला है वह अन्यतर जीव आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। अब यहाँ कितनी स्थिति बांधती क्या उसकी बात नहीं है, वो स्थिति का मतलब कहाँ था, वो तो उसके अनुभाग में और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता था प्रति निषेक निषेक रचना में होता है, यहाँ उससे कोई स्थिति की बात नहीं, यहाँ तो प्रदेशों की है। समय प्रबंध पूरा लेना है। इस प्रकार ओघ के समान, क्योंकि वो हमने उपशामक शपक जहां जहां होते हैं उसके ओघ के समान बताएंगे, तो ओघ के समान काय योग वाले, क्योंकि उसमें पंचेंद्रिय संगी भी चाहिए, तो काय योग वाले, लोभ कषाय वाले, चक्षु दर्शन वाले, भव्य और आहारक जीवों के जानना चाहिए। मनोयोग वचन योग को क्यों नहीं लिया? जगन्य की बात कहाँ है यहाँ पर? काय योगी लोभ कषाय चक्षुदे भोसे, है ना, मनोयोग वचन योग को नहीं लिया है खास। देखेंगे आगे कहीं उसका, अभी तो यहाँ ही रुकेंगे हम, हाँ अलग लेंगे, यही रुकेंगे अभी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो।
Gracias.